सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी। टंडन जी, स्वागत है आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में।
नमस्कार
टंडन जी। बेहद अहम कुछ केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय आज सामने आए हैं। उसमें सबसे अहम जो एक निर्णय सामने आया वो है भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल का, जिसमें 12,000 करोड़ से ज्यादा की गारंटी की बात की गई है। साथ ही साथ एक डोमेस्टिक इंश्योरेंस पूल की बात की गई है, ताकि जितनी भी बाजार में उतार चढ़ाव हों उन सब से हम अपने उपभोक्ताओं को बचा पाएं। न केवल निजी इंश्योरेंस की बात है, साथ ही साथ मैरिटाइम रिस्क जैसे हल और मशीनरी, कार्गो, वॉर रिस्क, इन सब को भी कवर किया गया है। आइए चर्चा शुरू करने से पहले सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के शब्द।
मैरिटाइम इंश्योरेंस, ये हम सब जानते हैं कि जो आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उससे समझ में आया कि दुनिया भर में जो इंश्योरेंस का सिस्टम होता है और री इंश्योरेंस का सिस्टम होता है, उस सिस्टम में इस तरह के बड़े सीरियस प्रॉब्लमेटिक समय के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था को बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया, भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल। कोई भी जो शिप जब जाती है ओशन में, तब उसका एक इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस कई प्रकार की एक्टिविटीज के लिए होता है। एक बेसिक इंश्योरेंस हो गया कोई डैमेज होता है उसके लिए, दूसरा कोई प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी के लिए। मान लो किसी पोर्ट में गए, पोर्ट में जाने के टाइम में पोर्ट की जो बर्थ होती है उसके साथ बाय चांस स्ट्राइक कर गए, तो उसमें पोर्ट वाले आपके ऊपर कोई क्लेम ना डाले, इसके लिए इंडेमनिटी का इंश्योरेंस होता है, उसको P&I बोलते हैं। फिर पॉलिटिकल रिस्क होती है कई जगह वॉर की रिस्क होती है। उन सारी रिस्क को अगर हम देखें तो इंश्योरेंस का एक बड़ा फैक्टर जो इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में समझ में आया दुनिया को, कि इंश्योरर्स और री इंश्योरर्स वहां जाने वाले, वेस्ट एशिया में जाने वाले शिप्स को इंश्योर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें ये शिप ओनर है, उसके पीछे इंश्योरर और उसके पीछे री इंश्योरर और उसके पीछे सॉवरेन बैकस्टॉप। अगर इस तरीके से देखें तो ये व्यवस्था की गई है इस प्रोग्राम के तहत।
टंडन जी, अलग अलग इंश्योरेंस की पॉलिसीज पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हमें कुछ बताया, आप कृपया हमें बताएं कि कितना जरूरी है ये इंश्योरेंस में जो बदलाव किए गए हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के, जो ये निर्णय हैं, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की उन्होंने बात की, अस्थिरता के बीच भारत की स्थिरता की बात की, आप बताएं कितना महत्वपूर्ण है ये।
देखिए, ये भारत समुद्री बीमा पूल जो बनाया गया, जिसकी चर्चा मंत्री जी ने भी अभी की, जिसकी सतत समुद्री बीमा कवरेज की सुविधा देने के लिए 12,980 करोड़ रुपए की गारंटी दी गई है
जी।
और ये पूल ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय व्यापार को उन जहाजों के लिए किफायती बीमा मिल सके जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मूल से भारतीय बंदरगाहों तक या उसके विपरीत मार्गों पर कार्गो को ले जा रहे हैं। जैसे अभी बात हो रही थी कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसके बारे में मंत्री ने भी चर्चा की वेस्ट एशिया में, तो ऐसे में ये जहाज भले ही अस्थिर समुद्री रास्तों से भी गुजर रहे होंगे तो भी इनको गारंटी दी जाएगी, क्योंकि अभी ऐसा सुनने में आ रहा है बहुत से जहाज जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनके जो बीमा की गारंटी है उनको लगता है वो शायद उनको नहीं मिलेगी। तो ये जो अभी उथल पुथल हो रही है, इसके कारण हम सब जानते हैं, रोज देखते हैं कि समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है, तो जिससे माल और जहाजों के नुकसान का जोखिम भी बढ़ गया है और इसके परिणाम स्वरूप बीमा लागत भी बढ़ रही है और बीमा की निरंतर उपलब्धता में अनिश्चितता भी आई है। तो इसके अलावा भारतीय जहाज जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षतिपूर्ति समूह यानी इस के ऊपर निर्भर हैं, तो इसलिए आज सरकार ने ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया ताकि हमारे जो जहाजों की आवाजाही है वो किसी तरह के ऐसे घरेलू समुद्री जोखिम कवरेज पूल की जो जरूरत थी उसको आज ये पूरा करने की ओर सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया है। और मैं समझता हूँ इससे एक ये लाभ होगा, जोखिम के कारण जो कार्गो शिप जो हमारे गैस और पेट्रोल के सामान को लेकर कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, तो अब उनको बीमा की ओर से जो जहाज के मालिक हैं उनको बीमा की जो सुरक्षा प्रदान की गई है ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं समझता हूँ इससे आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारे भारत के मूल के जहाजों की या जिन पर भारत का झंडा रहता है उनकी आवाजाही में बहुत सुविधा होगी।
कानन जी, हमने कई बार सुना है प्रधानमंत्री को ये कहते हुए कि सप्लाई चेन को सहज, सप्लाई चेन को और सरल बनाना है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, इसके प्रशासन में, इसके नियंत्रण में, इसकी मैनेजमेंट में, हर चीज में भारत को अग्रणी बनना है। कितना अहम होगा ये फैसला भारत की सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को और ज्यादा सरल बनाने के लिए, और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स हैं जो लगातार भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, लगातार भारत को देखते हैं एक ऐसे देश के रूप में जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच में ज्यादा स्थिरता प्रदान करता है और पूरे विश्व को मार्ग दिखाता है। कितना जरूरी होगा ये फैसला इन दोनों ही पहलुओं की तरफ?
बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे आपने भी कहा कि सप्लाई चेन जो है वो नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए इतने बड़े अमाउंट 12,980 करोड़ की रुपए की जो संप्रभु गारंटी दी गई है ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश देगी, जिसके चलते किसी प्रकार की भी जो सप्लाई चेन में किसी तरह की कोई बाधा ना आए।
बिल्कुल। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की अगर बात की जाए तो एक और बेहद अहम फैसला जो लिया गया वो था ग्राम सड़कों और ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, मतलब ग्राम से जुड़ा हुआ। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के शब्द ग्राम सड़कों को लेकर।
जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली उसके बाद से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत तेजी वापस से आई। आज उसका एक्सटेंशन और एलोकेशन इंक्रीज किया गया, जिससे कि PMGSY 3 अब हो गया 83,977 करोड़ रुपीस की स्कीम हो गई।
टंडन जी, लगभग 84,000 करोड़ रुपए की स्कीम, इस परियोजना को और भी तेजी से लागू किया जा रहा है, पीएम गति शक्ति का भी इसे हिस्सा बनाया गया है। कितना अहम है ये भारत के आर्थिक विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए?
ये जो अवधि बढ़ाई गई है 2028 तक, इसमें सबसे विशेष बात क्या है कि इसके अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों को, ग्रामीण कृषि बाजारों को, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को और अस्पतालों से जोड़ने वाले जो थ्रू रूट्स हैं या जो प्रमुख ग्रामीण लिंक हैं उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए, और इसी वजह से ये इसके लिए इतनी राशि की गई है। अब इसके अतिरिक्त और क्या होगा कि इसमें मैदानी क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के शेष कार्यों को पूरा करने में भी समय सीमा अब 2028 तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए भी इस अवधि को मार्च 2029 तक विस्तारित किया गया
जी।
और 31 मार्च 2025 से पहले जो स्वीकृत हुए वे सभी कार्य जिनका आवंटन अभी तक नहीं हो सका था उन्हें अब आवंटन प्रक्रिया के लिए भी अनुमति दे दी गई है। यानी पहले से स्वीकृत सड़कों के मार्गों पर आने वाले 161 नए लंबे पुलों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। यानी लगभग 961 करोड़ की अनुमानित लागतों से इन पुलों की स्वीकृति आवंटन प्रक्रिया को भी अब आगे बढ़ाया जा सकेगा। यानी ये योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु इसके लिए जो राशि आज दी गई है उसी राशि का जो पहले मूल था 80,250 करोड़ उसको बढ़ाकर अब 83,977 करोड़ कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के जो संसाधन है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ये देगा और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं और स्वास्थ्य केंद्रों तक को भी लाभ होगा, यानी जिससे विशेष रूप से दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी और जिससे रोजगार के तो व्यापक अवसर पैदा होंगे ही, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से निर्माण गतिविधि के माध्यम से हो या प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण उद्यमियों या सेवाओं को बढ़ावा देने के तरीके से। तो ये विस्तार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के अंतर को भी कम करेगा और ये एक बड़ी समावेशी और सतत विकास की प्रक्रिया है जो विकसित भारत यानी 2047 तक के विजन को भी आगे बढ़ाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
पीएम गति शक्ति जैसे कई योजनाएं हैं जो एक साथ एक ही पन्ने पर ले आती हैं सभी मंत्रालयों को, सभी के जो मुखिया हैं वो एक साथ बैठकर कार्यान्वयन पर ध्यान देते हैं और प्रत्यक्ष कार्यान्वयन पर ध्यान देते हैं। कितना अहम है ये बढ़ते उभरते मजबूत होते भारत के लिए?
देखिए योजनाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन की जो एक जिसको कहते हैं कि उस पर जवाबदेही की बात होती है और सरकार उस पर सतत प्रयास करके उस पर नजर रखती है, आवश्यकता पड़ने पर आवंटन बढ़ाती है, समय सीमा बढ़ाती है, ये इस बात को दर्शाता है कि योजनाएं केवल कागज पर बनकर नहीं रह जाती, उनका क्रियान्वयन भी होता है और उसको लगातार प्रधानमंत्री स्वयं देखते हैं और इसलिए कैबिनेट के फैसलों में भी हम ये झलक मिलती है कि जब जब आवश्यक पड़ती है तो उसकी समय सीमा भी बढ़ाई जाती है और उसके लिए धनराशि का आवंटन भी बढ़ाया जाता है, जो जिसका प्रमाण आज हमको दिखाई दिया।
जी, जहां तक कनेक्टिविटी की बात हो, दूर दराज के इलाकों को जोड़ने की बात हो, एक और परियोजना इसमें शामिल की गई है ग्राम सड़क परियोजना में, जो कि है लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस। हमने देखा बोगीबेल ब्रिज बना, हमने देखा चनाब नशरी ब्रिज बना, कितना अहम है ये कदम इस सरकार का?
बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ये फैसला जो है ये ग्रामीण विकास के प्रति जो सरकार की प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा कि योजना बनाई और छोड़ दी, तो ये वो जो प्रतिबद्धता है और 2047 तक जो विकसित भारत का सपना है या जो लक्ष्य है, उसमें जब तक ग्रामीण विकास नहीं होगा, जब तक वो पिछड़े एरिया जो है वो नहीं जुड़ेंगे, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जो योजना है ये फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी एक संजीवनी साबित होगा और इसका विस्तार के लिए जो 3,000 करोड़ के आवंटन से दूर दराज के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का भी काम तेजी से आएगा। ये जो आज ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर भी जो महत्वपूर्ण फैसला किया गया, ये भी उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।
और साथ ही साथ अनंत जी, 15 जिलों में भारतीय रेल के नेटवर्क को 601 किलोमीटर से बढ़ाने की बात की गई है। इसकी जो लगभग राशि जो इसमें प्रयोग की जाएगी वो होगी 25,000 करोड़ रुपए, इस पर भी मंजूरी मिल चुकी है। क्या कहेंगे, कितना जरूरी है ये दो जो राज्य हैं जो इनसे सबसे ज्यादा जिन पर एक सकारात्मक असर होगा?
ये दोनों जो हैं ये मल्टी ट्रैकिंग योजनाएं हैं और अपने ठीक आप 15 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के, इनमें जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, इस समय नेटवर्क है भारतीय रेल का, और उसमें एक 601 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी, इसलिए उसके लिए जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 24,815 करोड़ आवंटित की गई। और ये भी कहा गया है कि ये योजनाएं 2030 और 31 तक इनको पूरा भी कर लिया जाएगा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। और नई योजनाएं लगातार हम देखते हैं, लगभग हर कैबिनेट की बैठक में रेल संबंधित यानी जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संबंधित कोई ना कोई एक ऐसी योजना सामने आती है जिसकी स्वीकृति मिलती है। और रेल नेटवर्क तो जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके लिए आज ये 15 जिलों में मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की आज और एक इसमें जुड़ गया ये एक कार्यक्रम।
और टंडन जी, महंगाई भत्ते को भी जहां तक देखा गया है, हम सुनते हैं केंद्रीय मंत्री के शब्द।
हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं, उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रूपए। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 जनवरी 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा।
टंडन जी, आपके विचार इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर?
बिल्कुल, देखिए ये तो एक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए एक बहुत बड़ी राहत भी है, और जो इसकी किस्त जारी करने की भी मंजूरी जो दी गई है वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, तो ये मूल वेतन और पेंशन जैसा मंत्री जी ने भी कहा कि 58% की जो मौजूदा दर है उसमें 2% की इसमें वृद्धि की गई है। और सरकार ने अपने खजाना इस तरह से देखा जाए तो महंगाई राहत देने के लिए इसको भी लगभग 6,800 करोड़ प्रति वर्ष का जो बोझ है उसको सहन करने की अनुमति दी है, और इसमें लगभग 50.5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को और 68.27 लाख पेंशनरों को भी इसका लाभ होगा। और ये स्वीकृति जिस फार्मूले के अनुसार दी गई है वो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, तो सरकार अपने इस वादे से मुकरी नहीं है कि जो भी केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश होती है और उसके अनुसार जब जब भी भत्ता बढ़ाने की बात आती है महंगाई का, तो सरकार उसमें कभी भी पीछे नहीं रहती है।
बिल्कुल टंडन जी, इन सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर आपने अपने विचार हमसे साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
सुर्खियों में